سرخیوں میں یہ आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर हैं। पिछले एक दशक में उनका ये सबसे लंबा विदेशी दौरा है। इस दौरान प्रधानमंत्री पहले घाना पहुंच रहे हैं, उसके बाद त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया जाएंगे। ये 5 देश ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं और भारत ग्लोबल साउथ के देशों के हक में हमेशा से आवाज उठाता रहा है। इस लिहाज से प्रधानमंत्री की ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है, भारत को इस यात्रा से क्या हासिल होने वाला है, इस सब को विस्तार से समझने के लिए आइए स्वागत करते हैं स्टूडियो में पूर्व वरिष्ठ राजनयिक अम्बेसडर अशोक सज्जनहार जी का। स्वागत है सर आपका।
बहुत धन्यवाद।
अम्बेसडर सज्जनहार, प्रधानमंत्री की इस यात्रा में सबसे ज्यादा जिस शब्द की चर्चा हो रही है वो है ग्लोबल साउथ। हम सबसे पहले आपसे इसी शब्द के बारे में समझना चाहेंगे, ग्लोबल साउथ क्या है और भारत कैसे इन देशों के साथ अपने संबंधों को और बेहतर करने की दिशा में काम कर रहा है।
देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, जो ये ग्लोबल साउथ है क्या। तो इसको पहले कहा जाता था साउथ साउथ कोऑपरेशन। दक्षिण देश में, जो कि इतने ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, अभी डेवलपिंग कंट्रीज के स्टेटस में है, तो उनको जब विकसित होना है तो या तो उनके अपने संबंध सहयोग हो सकता है जो उत्तर के देश हैं, या फिर अपने ही बीच में जो ये विकासशील देश हैं उनके बीच में सहयोग बढ़ाया जाए। भारत ने इसको एक नया रूप दिया। जब भारत G20 का प्रमुख बना, जब हमने उसकी चेयरमैनशिप ली, तो तब हमने सबसे पहले 1 जनवरी 2023 को हमने इसका कार्यभार संभाला और 12 जनवरी को 10 दिन बाद ही हमने एक समिट ऑर्गेनाइज किया, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। इसमें प्रधानमंत्री मोदी का ये सोचना था, जब ये G20 के देश हैं, 20 देश वो एक अराउंड टेबल मिलते हैं और बातचीत करते हैं और सभी विश्व के जो भी चुनौतियां हैं उनका समाधान निकालने का प्रयास करते हैं, हालांकि ये सब बहुत महत्वपूर्ण देश हैं, परंतु उसको छोड़कर 180 देश हैं जो कि उस कमरे से बाहर हैं और जो भी निर्णय लिए जाते हैं G20 द्वारा, तो उनका प्रभाव उनके ऊपर सबसे अधिक पड़ता है। तो इन्होंने इसीलिए ये इन सभी देशों के साथ एक वर्चुअल समिट किया। करीब 125 देशों ने, बहुत देश हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट लेवल पर, वाइस प्रेसिडेंट लेवल, फॉरेन मिनिस्टर लेवल पर उन्होंने उसमें सम्मिलित हुए भाग लिया। वो उनका मतलब ये था, जो उनकी क्या आकांक्षाएं हैं, उनकी क्या आशाएं हैं, उनकी क्या कंसर्न्स हैं, एंग्जाइटीज हैं, उन सब को ग्लोबल हाई टेबल पर लेकर आया जाए, G20 के टेबल पर लाया जाए। तो इस प्रकार से भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर मुखरित हो गया है।
बिल्कुल। अब हम आते हैं एक एक कर 5 देशों की यात्रा पर जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं। सबसे पहले घाना से शुरुआत करते हैं, पश्चिम अफ्रीका के इस देश के साथ कैसे संबंध रहे हैं हमारे और प्रधानमंत्री की इस यात्रा से इन संबंधों को और बेहतर होते हुए आप कैसे देख रहे हैं।
बहुत महत्वपूर्ण देश है ये और करीब 30 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी की वहां पर यात्रा हो रही है, तो बहुत वहां पर हमारा डायस्पोरा भी है, वहां पर हमारी कंपनीज बहुत हैं, वहां पर हमारा जो अगर ट्रेड देखा जाए तो $3 बिलियन है, अगर हमारा निवेश देखा जाए तो $2 बिलियन है। भारत सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी है घाना का, और अगर हम देखें सारा वहां पर टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, मुझे जाने का वहां पर अवसर प्राप्त हुआ, वहां पर एयरटेल पूरी तरीके से फैला हुआ है, छाया हुआ है, और हमारी जो अपनी गाड़ियां हैं, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, अशोक लेलैंड हो, महिंद्रा हो, वो सब आपको देखने में मिलेंगी। और अभी भी मेरे विचार से व्यापार के ऊपर बात की जाएगी और एक वैक्सीन हब वहां पर बनाने का उनका इरादा है। जो वहां के राष्ट्रपति हैं वो यहां पर 2015 में आए थे, घाना का नेतृत्व करते हुए आए थे, जब हमारा इंडिया अफ्रीका फोरम 3 यहां पर हुआ था, और प्रधानमंत्री को एक ये मान दिया जाएगा जो वो वहां के पार्लियामेंट को भी एड्रेस करेंगे। तो मैं समझता हूं जो घाना, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है पश्चिम अफ्रीका में, जब प्रधानमंत्री मोदी की वहां पर यात्रा होगी तो उससे हमारे संबंधों को और पश्चिम अफ्रीका के सभी देशों के साथ हमारे संबंध बढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर जो वैक्सीन हब बनाया जाएगा केवल घाना के लिए नहीं, सभी जो उसके निकटतम पड़ोसी देश हैं उनके लिए भी इसका प्रयोग किया जाएगा।
इसके बाद आइए सीधे चलते हैं घाना, जहां हमारे आकाशवाणी संवाददाता आलोक रंजन राय प्रधानमंत्री के इस दौरे की कवरेज के लिए पहुंचे हुए हैं। उनसे जानते हैं कि इस यात्रा से पहले वहां क्या माहौल है, लोगों में कैसा उत्साह है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर।
प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में आगरा शहर में हमें बहुत सारे पोस्टर्स देखने को मिल रहे हैं और न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे कवरेज है, डिटेल्ड आर्टिकल्स हमें देखने को मिल रहे हैं और साथ ही साथ इंडियन कम्युनिटी जो यहाँ है, जिनकी संख्या लगभग 15,000 है, उनमें काफी उत्साह है क्योंकि ये 30 सालों बाद ऐसा हो रहा है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यहाँ घाना में एक विजिट हो रही है। तो इस हिसाब से ये एक बहुत ही ऐतिहासिक विजिट है और लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है, खास करके इंडियन कम्युनिटी में, और बहुत सारे MOUs साइन होने वाले हैं और साथ ही साथ एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट भी आज शाम में देखने को मिलेगा। तो प्रोग्राम की शुरुआत होगी गार्ड ऑफ ऑनर सेरेमोनियल वेलकम से, उसके बाद डेलीगेशन लेवल टॉक्स हैं, जिसके बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में MOUs जो भी साइन हुए हैं उनकी घोषणा होगी, उसके बाद स्टेट डिनर है और कल प्रधानमंत्री मोदी का इंडियन कम्युनिटी के साथ एक इंटरेक्शन है, उसके बाद वह एनक्रुमा मेमोरियल भी जाएंगे, उसके पश्चात मोदी जी का पार्लियामेंट में उनकी स्पीच है और इसी के साथ इस दौरे की समाप्ति होगी।
अब हम प्रधानमंत्री के उनके दौरे का दूसरा देश है त्रिनिदाद और टोबैगो, उस पर आते हैं। हम मैप में देखें तो ये देश कैरेबियाई सागर में है और पूरी तरह से द्वीपों पर बसा हुआ है, बिल्कुल वेनेजुएला के ऊपर। इस कैरेबियाई देश के साथ हमारे संबंध कैसे रहे हैं और दोनों देश अपने संबंधों को और बेहतर करने के लिए भविष्य में क्या संभावनाएं देखते हैं?
ये बहुत ही महत्वपूर्ण देश है और जो ये आपने कहा, जो वहां पर द्वीप उनके साथ ये बना हुआ है देश ट्रिनिदाद टोबैगो, इसमें करीब 45% जो वहां की जनसंख्या है वो भारतीय मूल की है, तो इंडियन डायस्पोरा का वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण वहां पर रोल है। वहां के जो राष्ट्रपति हैं, जो वहां की प्रधानमंत्री हैं, दोनों महिलाएं हैं और दोनों भारतीय मूल की हैं, तो इसीलिए हमारा बिल्कुल ही उनसे जो संबंध है बहुत ही अच्छा संबंध है। वहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण दिया हुआ है जो पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे। आपके सुनने वाले श्रोताओं को याद होगा जो अभी 8 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी वहां पर कैरिबियन विजिट उन्होंने किया था गयाना में और सेकेंड इंडिया कैरिकॉम समिट वहां पर हुआ था, तो ये क्षेत्र है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक मैं अगर कहूं ग्लोबल तरीके से, तो जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है करीब 11 साल पहले 2014 में, तो हम केवल उन्हीं बड़े देशों पर अपना ध्यान नहीं रोके रखते, हम जो भी छोटे देश हैं, क्योंकि अगर हमें मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में सपोर्ट चाहिए, अगर हमें UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी सपोर्ट चाहिए, तो बहुत से ऐसे देश हैं, अफ्रीका के हैं और दक्षिण अमरीका के जो देश हैं वो भी वहां के सदस्य हैं, तो उनके साथ भी हमको साथ में मिलकर काम करना, और मैं समझता हूं जो व्यापारिक सहयोग, ट्रेड और कोऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत ही ये महत्वपूर्ण विजिट रहेगी ट्रिनिदाद टोबैगो में, क्योंकि अपने इंडियन डायस्पोरा के अलावा वहां पर जो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जो DPI का वहां पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो उनको रुचि है उसमें भी हम अपने सहयोग को बढ़ा सकते हैं।
इसके बाद तीसरा देश है प्रधानमंत्री की यात्रा का अर्जेंटीना। अगर हम क्षेत्रफल के लिहाज से या जनसंख्या के लिहाज से देखें तो अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्या मायने हैं इस समय प्रधानमंत्री के अर्जेंटीना जाने के?
अर्जेंटीना में यहाँ पर बायलैटरल विजिट करीब 57 साल बाद हो रही है वहां पर। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए थे 2018 में जब ब्यूनस एयर्स में G20 का समिट हुआ था, तब उन्होंने वहां पर पार्टिसिपेट किया था, पर बायलैटरल विजिट के लिए ये करीब 57 साल बाद है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये विजिट है। और वहां पर एक और चीज है जो हमको देखनी है, वहां पर रेयर अर्थ्स और क्रिटिकल मिनरल्स वो बहुत मात्रा में हैं और हमारी बहुत सारी कंपनीज वहां पर इन सब क्षेत्रों में लगी हुई हैं, और अभी भी मुझे पूरा यकीन है जो जब प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे तो उनकी जो बातचीत होगी तो उसमें इन क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर जरूर बहुत काम किया जाएगा। और जो उनका पहला पड़ाव है प्रधानमंत्री मोदी का घाना में, उसमें भी उनके पास, मैंने गोल्ड का तो जिक्र किया था, परंतु उसके साथ साथ उनके पास भी बहुत क्रिटिकल मिनरल्स हैं और उनको भी उनमें निवेश कैसे किया जाए, उनकी माइनिंग कैसे की जाए और उनका प्रोडक्शन कैसे किया जाए, क्योंकि इनकी आजकल बहुत जो भी नई टेक्नोलॉजीज आई हैं उनमें उनकी क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत बहुत ज्यादा है।
अब हम चलते हैं अगले देश की यात्रा जो प्रधानमंत्री की होने वाली है और वो बहुत ही खास, अर्जेंटीना का ही पड़ोसी देश है ब्राजील। ब्राजील में इस साल अभी ब्रिक्स सम्मेलन होना है। हमारे श्रोताओं को सबसे पहले संक्षेप में ब्रिक्स के बारे में बताएं।
ब्रिक्स का जो ये शुरुआत हुई, पहले एक गोल्डमैन सैक्स के एक चीफ इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे जिम ओ'नील, उन्होंने 2001 में ये एक उन्होंने कॉइन किया एक एब्रीविएशन ब्रिक, ब्राजील रशिया इंडिया चाइना, ये चार बड़े देश हैं, चार बड़ी पॉपुलेशन है, चार बड़ी इकोनॉमी है, और उन्होंने कहा जो आगे चलते हुए जो विश्व का भविष्य जो है, चाहे वो आर्थिक रूप में हो या राजनीतिक रूप में हो, तो ये ऐसे बड़े देश इसको डिसाइड करेंगे। तो ये चार वो 2001 में उन्होंने कहा इसके बारे में। 2006 में पहली बार मुलाकात हुई इनके विदेश मंत्रियों की ऑन द साइडलाइन ऑफ यूएन जनरल असेंबली। 2009 में पहली बार शिखर सम्मेलन हुआ यकतरिनबर्ग में, जो रूस में है, रशियन फेडरेशन में है, और उसके बाद हर साल ये शिखर सम्मेलन होते रहे हैं। 2010 में इसमें जो नंबर है उसमें इजाफा किया गया, ब्रिक को ब्रिक्स बनाया गया, साउथ अफ्रीका इसमें जोड़ा गया। जब ये मुलाकात हुई, सबसे पहली मुलाकात चीन में हुई, हाइनान में, साइना में, तो वहां पर पांच हो गए। और अभी कुछ समय पहले 2022 के आसपास एक बहुत बड़ी होड़ लग गई है जो कैसे और भी देशों को ब्रिक्स में वो ज्वाइन करना चाहते हैं। कुछ एनालिस्ट का, कमेंटेटर्स का ये मानना है जो पहले जो पोजीशन G7 की होती थी, सात विकसित देशों की, क्योंकि उनकी जो GDP है, टोटल है, बहुत ज्यादा है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, सभी तरीके से वो बड़े सक्षम है, तो उनका जो महत्व पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था में कम हो रहा है, तो इन देशों का जो महत्व है वो बढ़ रहा है।
बिल्कुल।
तो पिछले साल 6 और देश उसमें इंक्लूड कर दिए गए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ईरान, इथोपिया और एक और देश, तो ये सभी देश इसमें मिला लिए गए हैं। अर्जेंटीना को मिलाया था, परंतु अर्जेंटीना ने कहा नहीं, मैं नहीं मिलना चाहता हूं। और फिर पिछले साल जब ये इसका शिखर सम्मेलन हुआ कजान में अक्टूबर में, तो तब और बहुत करीब, कहा जाता है करीब 30 और देश हैं जो कि इसके सदस्य बनना चाहते हैं। तो इसीलिए इसको ओवरलोड नहीं किया जाए, तो उनको सदस्यता नहीं दी गई, परंतु 12 देशों को पार्टनर कंट्री बना लिया गया। तो इस बारी ब्राजील में, रियो में, ये 10 तो होंगे जो सदस्य हैं, 12 पार्टनर कंट्रीज होंगी, 8 और देशों को बुलाया गया है जो स्पेशल इनवाइटीज हैं, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट लेवल पर आएंगे, और 7 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड्स हैं वो भी उसमें हिस्सा लेंगे।
बिल्कुल, हमें इस ब्रिक्स सम्मेलन के एजेंडे के बारे में आप बता सके।
देखिए, वहां पर वो बात करेंगे एक तो ग्लोबल गवर्नेंस की, क्योंकि हम देख रहे हैं जो गवर्नेंस बहुत मुश्किलात आ गई हैं। दूसरा वो करेंगे मल्टीलैटरलिज्म की, क्योंकि आजकल हम देखते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काम करने में बिल्कुल ही असमर्थ है, या फिर WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पर मल्टीलैटरलिज्म वो बहुत ही अपने बैकफुट पर आ गया है। उसके अलावा कैसे नेशनल करेंसीज में ट्रेडिंग किया जाए, मेरे ख्याल से जैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जो डी-डॉलराइजेशन वगैरह हो रहा है, उसके बारे में कोई विचार से बात नहीं होने वाली है, परंतु आगे के लिए मेरे विचार से चुनौतियां बनेंगी जो इसको कैसे, इतने सारे अगर सदस्य हैं तो इनको कैसे डील किया जाए। और अगले साल भारत इसका चेयर बनेगा, भारत में शिखर सम्मेलन होगा, और ये मेरे विचार से बड़ा अच्छा ये मौका होगा प्रधानमंत्री मोदी का, इतने सारे बड़े नेता, देशों के नेता होंगे, उनके साथ मुलाकात करने का, द्विपक्षीय वार्ता करने का।
प्रधानमंत्री के दौरे का आखिरी और या पांचवा देश जिसे हम कहें तो वो है नामीबिया। हमारे श्रोताओं को बताएं कि इस नामीबिया के साथ हमारे संबंध कैसे रहे हैं।
हमेशा भारत ने नामीबिया का साथ दिया है, उसको अपनी इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता मिली 1990 में, परंतु 1986 में ही हमने उनको अनुमति दे दी थी जो आप हमारे यहाँ पर एक एम्बसी अपना खोल लीजिएगा। उससे पहले 1960 से भारत तत्पर था, यूनाइटेड नेशंस में उनकी स्वतंत्रता के लिए हम आवाज उठा रहे थे। वहां भी बहुत मात्रा में क्रिटिकल मिनरल्स हैं, भारत एक उभरती शक्ति है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम आगे जा रहे हैं, तो हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं आने वाले 5 दिन, और इसलिए हम श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि आकाशवाणी अगले 5 दिनों तक लगातार प्रधानमंत्री के कवरेज से संबंधित इसी तरह से विश्लेषण करते हुए कार्यक्रम लाता रहेगा। अम्बेसडर सज्जनहार जी, आप आकाशवाणी में आए,
बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुर्खियों में